और कोई नहीं, कोई नहीं भाग्यवान।
ओम शांति। सभी कहाँ कहाँ के, लंदन के कौन कौन हैं? अच्छा, ज्यादा लंदन। और बाकी यूएसए, यूएसए क्यों नहीं, दुबई, दुबई एक। और कहाँ के, केन्या, केन्या से, अफ्रीका, गुड। ऑस्ट्रेलिया से भी। और बताओ आज टॉपिक क्या रखा? कि आज बाबा ने कहा कि रूहानी सेवा में हड्डी हड्डी देना चाहिए, जैसे दधी जी ऋषि ने हड्डी हड्डी दिया। तो यहां भी हम कहते हैं बाबा के यज्ञ में आए हो, ज्ञान में आए हो, तो बाबा कहता है मैं हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तीनों देता हूं। तो ये तीनों सभी को मिलेगा, सभी बाबा के बच्चे हैं। तो हेल्थ भी, वेल्थ भी, हैप्पीनेस भी हर एक बच्चे को मिलना चाहिए। मिलेगा पक्का कि कोई चेंज? देखो अभी बहन जी ने ऐड कर दिया एक शब्द, जैसे पुरुषार्थ। तो कैसे पुरुषार्थ करना चाहिए? तो हेल्थ के लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, वेल्थ के लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, हैप्पीनेस के लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, तन मन धन कितना करना चाहिए, तन से कितना, मन से कितना, धन से कितना, कितना के लिए करना चाहिए, उसका भी लिमिट चाहिए ना। हाँ, तन कितना साल के लिए आपको बीमार निरोगी काया चाहिए, कितने जन्मों के लिए? हाँ, तो 22 माना 22 जन्मों के बाद बीमार है तो चलेगा? तो आपने कहा 21 जन्मों के लिए बस, वो बाबा गारंटी देता है। तो सारे क्लब के लिए चाहिए ना, तो इसलिए इन्होंने कहा पुरुषार्थ करना चाहिए। तो पुरुषार्थ क्या करना चाहिए? सबको दाल चाहिए, रोटी चाहिए, सब्जी चाहिए, तीनों चाहिए ना। रोज सब्जी एक ही नहीं खाएंगे, दाल एक ही नहीं खाएंगे, रोटी एक ही नहीं खाएंगे, वो तीनों कहां से आएगा? परम धाम से तो बाबा तो नहीं देगा, तो कहां से आएगा? हर एक व्यक्ति को बोना पड़ेगा, जितना जो बोएंगे उतना मिलेगा। अगर धरती का एक नियम है, एक बीज बोलो 50-100 दाना लगते हैं, लेकिन एक नियम है, व्हाट यू सो सो शैल यू रीप, जो बोएंगे वही मिलेगा। आप कहो कि मैं चावल का दाना बोता हूं और मुझे गेहूं चाहिए, हो सकता है? नहीं, भगवान करेगा ऐसा? ऐसा कर सकता है? नहीं। तो बताओ कि तन को निरोगी काया होना चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? मन को, मन निर्मल सदा हर्षित रहना चाहिए, तो उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? सदा सारे कल्प के धन संपत्तियों से भरपूर चाहिए। हर एक चाहते हैं, तो अपने आप तो होगा नहीं है, चमत्कार भी नहीं। तो वो संगम पर अभी क्या पुरुषार्थ करने से क्या होगा, वो जानना पड़ेगा ना। नहीं, हम बाबा के बने ज्ञान सुनते फिर ये बीमारी क्यों, ये गरीब क्यों, ये श्रीमंत क्यों, ये काला क्यों, ये लंगड़ा क्यों, इन सब प्रश्नों का जवाब आता है। तो बताओ क्या करना चाहिए? अगर इस शरीर को कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? हाँ, कितनी सेवा करना चाहिए? हड्डी माना कितनी, उसका भी लिमिट होगा ना। तब कहा ये तन, बाबा ने कहा, शिव बाबा ने आके इस सृष्टि पर ये रुद्र यज्ञ रचा है, इस यज्ञ में ब्राह्मण सेवा करते हैं और कोई नहीं। तो ब्राह्मण जो है बाबा के बच्चे, उसको ब्राह्मण कहते हैं। तो उन्होंने एक मिनट इस यज्ञ की, इस तन के द्वारा कोई भी सेवा करो तो एक का पदम गुना देता है। माना एक मिनट अगर इस यज्ञ की आपने कोई सेवा किया, सेंटर सब कुछ आया सब जगह पर, तो एक जन्मों के लिए निरोगी काया मिलेगा। तो कितने जन्म के लिए चाहिए, तो कितना मिनट करना चाहिए? ऐसा तो नहीं, बाबा तो चतुर सुजान है, भोलानाथ तो है, लेकिन चतुर सुजान भी है, हिसाब किताब भी है। तो कितना मिनट और कितने जन्मों के लिए चाहिए? तो विशा भगवान बताए बच्चे एक का पदम गुना मैं देता हूं, ये धरती भी आज एक का 50-100 गुना देती है। तो भगवान पदम गुना देता है। तो बच्चे एक मिनट इस तन से इस यज्ञ की सेवा करना चाहे, तो भाई जी कहता मैं रोज मुरली सुनता हूं, योग करता हूं, ये बीमारी क्यों प्रश्न आता है। हम रोज मुरली सुनते कितने सालों से, योग भी करते हैं, ये बीमारी क्यों। मन लगाया आपने, धन लगाया, तन कहां लगाया ये समझ में नहीं आता है। ये बीमारी क्यों, बाबा ने ऐसे तो नहीं कहा बच्चे याद करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, तीनों की विधि, तीन चीज चाहिए, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस। इसलिए नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार तीनों को नंबर है, तीनों के लिए पुरुषार्थ है। तो ज्ञान की स्पष्टीकरण चाहिए, स्पष्ट नहीं होता है। तो ये तन किसकी सेवा में लगा रहे हो, 24 घंटे आपके पास है, पूछ लो। अगर इनकी सेवा में लगाते तो वो देंगे रिटर्न, बाबा कैसे देगा। आज दुनिया में कितने साधु संत, कितने लोग पवित्र रहते हैं, शादी नहीं करते हैं, तो वो सत्युग में आएंगे नहीं। श्रीमत के अनुसार श्रीमत लगाया, फिर ऐसे नहीं सिर्फ मैं बाबा की सेवा करता हूं। तो श्रीमत के अनुसार अगर इस यज्ञ की सेवा करते हो तो एक का पदम गुना जमा होगा। तो पूछ लो कि ये तन किसकी सेवा में लग रहा 24 घंटा। अगर कल बीमार हो बाबा आप ठीक करो, बच्चे आप बीमार करो और मैं ठीक करूं, है ना। डॉक्टर तो फ्री नहीं लेगा, फिर तो उसके लिए कंडीशन बता दे, ये पैसा कितना खर्चा करो तो इतना होगा, है ना। डॉक्टर तो है, बच्चे ये करो तो ये होगा, तो दवाई भी देता है, फिर जितना आप करो उतना आपके ऊपर है ना। तो ये जानना चाहिए तन किधर लगा रहा हूं मैं। अब आप बताएंगे कि बताओ, तो माता जी कहती है भाई जी मेरे तन से तो कोई सेवा नहीं होती है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूं, मैं बाबा को 10 लाख रुपए देती हूं, तो क्या बाबा मुझे निरोगी काया देगा, रिप्लेसमेंट करेगा, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, है ना। तो मन ठीक होगा ना, धन से क्या, तो धन ठीक मिलेगा ना। तन बाबा कुछ दवाई तो नहीं देगा, तब कहते हैं ड्रामा, तब कहते हैं भाग्य। तब बाबा ने आज भी कहा कल भी तकदीर बनाने के लिए आए हो। बरसात आई, बरसात के समय पर खेती में बीज बोना चाहिए तो एक साल के लिए अनाज उगेगा। अगर किसी कारण से आपने बीज बोया में बीमार था, घर में कुछ प्रोग्राम था, शादी थी और कुछ थे, किसी कारण अगर आपने बीज नहीं बोया तो किसको बताएंगे आप ये कारण, किसको बताएंगे, कोई भगवान सामने है, किसको बताएंगे। तब कहते तकदीर। तकदीर कहां शब्द आया, अगर आपने बोया नहीं तो आपको मांगने के लिए जाना पड़ेगा, मांगना माना भक्ति शुरू हो गया, कमाई नहीं किया द्वापर से आते ही मांगना पड़ेगा, भक्ति क्या है मांगना। भक्ति क्यों शुरू होगी, समय पर आपने कर्म नहीं किया, किसको बताएंगे आप, मेरा ये था इसके कारण ऐसा हुआ, इसके कारण ऐसा हुआ, ये कारण किसको बता, उसका नाम है तकदीर। क्या है वो जानना चाहिए। हम कहते मेरा भाग्य ऐसा, किसने भाग्य बनाया, भाग्य विधाता ने आके जब भाग्य की विधि बताई तो उस विधि पर मेरे कमजोरी के कारण मैंने विधि पूर्वक मैंने चला, उसके लिए बहुत कारण बताएंगे, वो कारण ही तकदीर कहते हैं। तकदीर को लकीर लग जाती है, भाग्य मेरा ऐसा है। किसने बनाया भाग्य, भगवान ने बनाया नहीं, उसने सभी को चांस दिया है, जितना जो जितना करो, समझ भी दी है, करना आपको, हरेक के हाथ में अपना तकदीर है, भाग्य है। जब भगवान भाग्य बांटने आया तो आपने क्या किया, तब समझ नहीं था, तो समझ नहीं है। देयर इज नो एक्सक्यूज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ ऑफ एक्शन, हर कर्मों का कायदा है। तब कहते भगवान की गति मति न्यारी है, जब कर्मों की गति मति न्यारी है तो कर्म कहां कर रहे हैं हम, उदाहरण बताता हूँ, एक उदाहरण आप बताओ। अभी भाई जी आप सब रोज सेंटर में आते हो, अभी सेंटर में एक ही कुमार आता है, प्रैक्टिकल है ये, तो रोज सेंटर में मुरली सुनने आता था। और गवर्नमेंट का आज से 20 साल पहले गवर्नमेंट का पानी आता है 7 बजे को ही, उसके बाद नहीं मिलता। तो कुमार जितने दूर से गरीब मुरली सुनने दौड़ दौड़ के आके बैठता है, बहन जी कहती भैया आप पानी भरो। तो पानी भरने जाता है, सोचता है बहन जी मुझे सेंटर में आ तो मुरली सुनने नहीं देती है, मैं क्या करूं, क्यों जाना चाहिए, सेंटर में आना ही बंद करता है। फिर थोड़े समय के बाद मिला, रही तुम सेंटर में नहीं जाते हो, भाई जी मैं मुरली सुनने के लिए जाता हूं, बहन जी मुझे सेवा में लगाती है, मुरली सुनने नहीं देती, तो क्यों जाऊं। तो आपने अपना भाग्य भी बिगाड़ दिया कि भाग्य बनेगा, सेवा करेगा तो भाग्य बनेगा ना, और भगवान को भी आपने भूखा रख दिया। अगर आपने पानी नहीं भरा तो भूख कैसे लगेगा बाबा को, बहन जी तो बाबा की सेवा में है, मुरली सुना रही है, कौन करेगा। तो मैं क्या करूं, अब इसका निवारण आप बताओ। कभी के आप सेंटर में जाते हो मुरली सुनने के लिए, योग करने के लिए, बहन सेंटर की बहन जी कहती है भैया ये सेवा करो, माता जी मेहमान आने और सब्जी काट लो, आप कहेंगे हम तो घर में भी सब्जी काटते थे, यहां आने के बाद भी मुरली सुनने योग करने आए और सेंटर में भी सेवा में लगा दिया, वो तो घर में भी करते थे, आप उधर से छोड़ के इधर आए, तो मन में दुविधा होती है ना, संकल्प चलता है, हम घर में तो करते उधर नहीं किया, मुरली सुनना है बाद में देखेंगे, यहां आने के बाद वही सेवा लगी तो यहां भी मुरली नहीं सुनी, तो क्या करना चाहिए, कुछ निवारण बताओ। आगा पूछ लेते हैं, तो बहन जी कहेंगे नहीं अभी अर्जेंट है, करना पड़ेगा, तो चलेगा मुरली मिस करके सेवा करो, तभी तो आपको बताया, तभी तो आपको पूछा, बहुत सेंटर में ऐसा होता है ना, तो उस समय आपकी मुरली योग मिस होता है, तो बाबा ने कहा बच्चे मुरली कभी मिस नहीं करना, बाबा का श्रीमत है, सेवा कभी मिस नहीं करो, मुरली मिस नहीं करना, सारे क्लब में एक ही दफा। तो क्या करे, अब उस भाई के मैंने एक एग्जाम्पल दिया, तो उसने क्या करना चाहता, तो पहले उसका एग्जाम्पल ले लो, तब मैंने उसने कहा मैं क्या करूं, मुरली सुनने तो नहीं थे, मेरा वेस्ट टाइम जाता है, मनुष्य ऐसे सोचता। तब मैंने कहा उसको एक साथ दोनों काम कर सकते हैं, कैसे, उस समय माइक भी नहीं है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो सारे कंडीशन है, हाँ तो कुछ भी नहीं कर सकते, कैसे एक साथ दो काम होगा। तो हमने कहा आप कमाई तो करते हो, एक प्लास्टिक का ड्रम ले लो, नल के नीचे रखो, नल ऑन करो, आके बैठ जाओ, 15 मिनट के बाद जाओ, ड्रम भरा, पानी भी भरा, मुरली भी भरी। आज के दुनिया में सेंटर में अगर आप सुनते हो, जैसे कहते हैं मुरली सुनते हुए माइक होता है, नहीं तो मोबाइल है ना, तो सुनाई देगा, एफएम चलता है, कहीं भी बैठो सेवा भी हो रही, ज्ञान भी सुन रही है, हर एक का युक्ति भी कर सकते हैं ना, युक्ति चाहिए ना, हो गया ना, नहीं तो हमारे मन में चलता है हम तो मुरली सुनने आए थे तो हमको सेवा में लगा, मन में दुविधा होती है, मन में चिंतन चलता है ना, आए थे कुछ लक्ष्य लेकर, लेकिन वो लक्ष्य यहां पूरा नहीं होता है तो दुविधा होती है, तो उसमें हम पॉजिटिव सोचे वो नहीं होता है, कहते हैं पॉजिटिव सोचो, हर एक में पॉजिटिविटी है, वो विचार नहीं आता, क्या आपका एक लक्ष्य था, मुझे जाके आज अच्छी तरह से योग करना है, आज अच्छी तरह से ये लक्ष्य लेके आते हो, वो लक्ष्य यहां फुलफिल नहीं होता है, तब दुविधा हो जाती है, अंदर युद्ध चलता है ना। अगर उसमें भी अगर आप सोचेंगे ये किसकी सेवा है, बहन जी की सेवा तो नहीं, बहन जी के हम कपड़े धो तो नहीं रहे, बहन जी के घर में तो नहीं कर रहे, बाबा की यज्ञ की शुभ बाबा की सेवा है, तो ये बुद्धि में है, वहां क्या निवारण हो सकता है। हाँ अगर नहीं माइक नहीं मोबाइल नहीं, कोई एक माता जी को बताओ तो आप मुरली सुन करके आके मुझे बताना, फिर ये करो, हाँ नहीं तो उसके बाद लेके पढ़ो, वो भी नहीं कर सकते है, साधन आज है माइक, जहां है माइक का प्रबंध देखो वो नहीं है, मोबाइल है मोबाइल एफएम चलता है, कोई ना कोई निवारण ढूंढना है, दुविधा में नहीं आना है, नहीं तो हर संकल्प जो हम चाहते हैं वो नहीं होता है, क्योंकि हर एक का लक्ष्य होता है कुछ ना कुछ, वो लक्ष्य के अनुसार नहीं हुआ वहां रास्ता नहीं ढूंढते, उसको बाबा ने आज भी कहा कल भी कहा, समस्या का निवारण ढूंढो। समस्या तो आती है, ये क्यों, ये समस्या क्या है, ऐसे ऐसे लोग है, ऐसे तुरंत गलत विचार चलता है, नेगेटिविटी चलती है। हाँ समस्या आई, उसका निवारण क्या है, इसको कहते हैं पॉजिटिव सोचना। कल भी सुनाया भवन, आज भी कहा। तो कैसे पॉजिटिव सोचे, हर जगह पर हर एक मनुष्य का जीवन का लक्ष्य होता है, मुझे इतना समय पर वहां पहुंचना चाहिए, आज ये काम करना चाहिए, नहीं होता है वहां कोई विघ्न आता है, जो सामने विघ्न के रूप में आता है उसके प्रति चलता है। हाँ ये विघ्न आया मेरे सामने, तो मुझे क्या दूसरा रास्ता मिलता है। हम उदाहरण देते हैं, पानी अगर ऐसे जाता है बीच में पत्थर आया, वो पत्थर तोड़ता नहीं है, साइड में रास्ता ढूंढता है। तो उसको एग्जाम्पल देते हैं हम, लेकिन हमको अपने जीवन में भी समस्या हर कदम पर आती है, हर जगह पर। कलयुग दुनिया में जो आप सोच के जाते हो वो कभी 99% नहीं होता है, तब कलयुग समस्या ही समस्या का। ये पता है, ये पता हो करके पहले से अपने को समझाओ, कोई भी समस्या आने दो, कोई हर्जा नहीं। तो मेरे साथ तब बाबा ने कहा बच्चे योगी योगी आत्मा बनो, अर्थात बाप को अपना साथ रखो। कल भी बताया आज भी बताया, कल बाबा ने कहा था कि क्या कहा था कल बाप को साथ रखने के लिए, जैसे शरीर और आत्मा दोनों साथ साथ है, अलग नहीं हो सकता है, तो बुद्धि में बुद्धि शुभ बाबा से अलग ना हो, बुद्धि शुभ बाबा से साथ रहे। क्या संभव है ये, पॉसिबल है तो बता, आपने किया कल क्या किया बताओ, बुद्धि को बाबा के साथ कैसे रखेंगे, वो एक ऊपर है एक यहां है, शरीर आत्मा और शरीर तो इधर ही है, तो वो कैसे रखा आपने। लेकिन आपने कल सारे दिन में ये क्या किया, बाबा तो नहीं चलाता है, आप बाबा के बुद्धि में वो होना चाहिए, उससे अलग ना हो, वो कैसे होगा। तो आपने कल सारा दिन में क्या चिंतन किया, खाना खाते कितने समय था आपके पास, एक एक घंटे में अगर नोट करो, एक एक घंटे में एक दो मिनट पांच मिनट तो बाबा के साथ थी, बुद्धि कैसी थी, तो एक मिनट हो गया फिर। ऐसे माना कहने का बुद्धि के अंदर बाबा से बात करते रहे, जब जब खाना चल रहे, खाना खा रहे हो, हर एक कर्म करते समय तो उससे बात करते रहे, उसको कहते हैं बाप का साथ, कंपेनियन, कंपनी सदा। ऐसे बुद्धि से जोड़ के परमधाम में, जैसे मन बुद्धि जोड़ नहीं सकते, बात कर रहे हो, बाबा आज आपने ये कहा था, बाबा आप कहते ऐसे करो, अब बाबा आप जैसे कि आपके साथ कोई है उसके साथ बात करते जाते हो, तो ऐसे बाबा से बात करते रहो। इसको कहा जो बाबा ने कल कि बुद्धि बाबा से अलग ना हो, तो एक एक दिन एक एक बताता, उसी दिन उसका सोच करके प्रयोग करो, अनुभव। तो तब बाबा ने इधर भी कहा कि बुद्धि के अंदर जैसे ये दोनों एक होना चाहिए, यहां भी तन भी चाहिए, मन भी चाहिए, धन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, ये दोनों कैसा हो, एक साथ दोनों काम हो। हाँ मुरली सुन भी रहे हम, सेवा भी कर, ना शब्द नहीं आना चाहिए कि संगम पर जो भी बाबा के घर में सेवा मिलती है, तब बाबा ने आज कहा रूहानी सेवा है, यही सच्ची सेवा है, यही तकदीर बनाने के एक विधान है, भाग्य यही यहां से बनता है, अभी जो कर रहे हो सारे कल्प के लिए बन जाता है, अगर अभी नहीं किया तो दोबारा भाग्य कैसे करेंगे आप, कल्प में एक ही दफा भाग्य विधाता आता है। तो किसी भी प्रकार की यज्ञ की सेवा हो तो वो सेवा ना नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कुछ पॉजिटिव निकालो, रास्ता निकालो, ये करते हुए मैं और क्या क्या कर सकता हूं, कैसे मुरली का प्रबंध कर सकता हूं, कैसे योग का प्रबंध कर सकता हूं। योग के समय पर आपको कोई कहेगा आपकी इच्छा एक थी, उस इच्छा के विरुद्ध कुछ करना पड़ता है, वहां इसको कहते पॉजिटिव ले लो हर चीज को। तो ये तन कहां लगाना चाहिए, तन की बीमारी आने का कारण हम धन लगाते हैं, जैसे माता जी ने कहा मनसा सेवा करते हैं, तन कहां लगाया। आप कहेंगे इतना ज्ञान योग करने के बाद ये बीमारी क्यों, वो ऋण बचा हुआ है उसका हिसाब किताब भोगना पड़ेगा। तन से सेवा जरूरी है। अब इसके ऊपर आपको कुछ पूछना है तो बताओ। हाँ, तो वो कर्मयोग दो प्रकार का है। एक कर्मयोग आप घर में खाना बना रहे हो, कपड़े धो रहे हो, तो शरीर से कर्म करें, मन खाली है, तो बाबा से बात किया, कर्म कर, बाबा से मुरली का चिंतन किया, वो किया। लेकिन ये कर्म योग के अंदर कर्म करने से पहले शुरू करने से, बैंक में पैसे गिनती करते हैं, एक मिनट शिव बाबा ओम शांति करेगा तो एक नोट चला जाएगा, तो कर्म करने से पहले बाबा ये आपकी सेवा कर रहे हैं, आप सदा मुझे देखते ना, आप मेरे सुपरवाइजर हो, आप देख रहे हो, आपको सन्मुख रख के मैं आपकी सेवा कर रहे हूं, तो बुद्धि के अंदर है कोई देख रहा है मुझको और काम कर रहे हैं, दो तीन घंटे तक कर्म में इन्वॉल्व है, लेकिन बुद्धि को स्मृति है कि मुझे कोई देख रहा है, किसी को साक्षी रख करके मैं सेवा कर रहा हूं। अंडरस्टूड? तो उसको कहते हैं ये बुद्धि का जहां कर्म योग है, तो वहां ऐसा कर्म हो गया बाबा ये आपकी सेवा हो गई, फिर आ जाओ, मतलब समबडी इज ऑब्जर्विंग यू, ये अटेंशन चाहिए, ठीक है, ये कर्मयोग के अंदर। तो तन की बात आई, तन कहां लगाना है हमको, कितना घंटा लगाना चाहिए, आप कोई भी कारण बताएंगे, मेरा ये था मैंने नहीं लगाया, तो किसी को नहीं बताने से कुछ भी नहीं होगा, कोई सुनने वाला नहीं है ना, देयर इज नो एक्सक्यूज भी नहीं, बाबा भी कहां किसको बताएंगे, तो तन भी लगाना जरूरी है। नहीं तो आज दुनिया में देखो, किसी को सुंदर शरीर है लेकिन सदा बीमार है, किसी के पास खाने के लिए इतना पैसे है, घर में खाने वाले कोई नहीं है, तो हेल्थ है तो वेल्थ नहीं, वेल्थ है तो हैप्पीनेस नहीं, इन तीनों में इम्बैलेंस है, तो उसका नाम है कलयुग। ये तीनों एक समान है उसका नाम स्वर्ग, ये तीनों में बैलेंस चाहिए। ये कौन करेगा, ऊपर से बाबा धन सोना कुछ देगा तो नहीं, विधि बताता है, बच्चे संगम पर ये तीनों बीज बोलो, कितना जन्मों के लिए आपको चाहिए उतना जन्मों के लिए करो, हिसाब किताब भी रखो, एक का पदम गुना। तो ये तन कितना हमको ईश्वर की सेवा में लगाना चाहिए, 24 घंटे हमारे पास है, ये समझ चाहिए। हाँ, हाँ, अगर जैसे भाई आपने कहा मैं नौकरी कर रहे हो आप, तो अपने लिए कर रहे हो, हाँ, तो भाई जी मैं सवेरे से रात तक, सवेरे 7 बजे जाता हूँ, रात को 8 बजे आता हूँ, सारा दिन मैं नौकरी करता हूँ, तो बाबा की सेवा कैसे करूँ मैं, आपका ये प्रश्न है ना, नहीं, नहीं कर रहे ऐसा आपका कहना, ठीक है, यहां ही बताओ, वो पूछ रही है कि सवेरे से रात तक मैंने तन बाबा के लिए नहीं लगाया, अपने लिए लगाया, ऐसा है ना, हाँ लगाया, तो उसने वो जो कमाई कर रही है, तो बाबा के श्रीमत के अनुसार बाबा को याद करके सेवा कर रही है, और जो कमाई हो रही है उसका 50% बाबा ने कहा बच्चे 4 भाग करो, एक भाग अपने लिए रखो, एक भाग परिवार के लिए रखो, एक भाग जमा रखो, एक भाग ईश्वरीय सेवा में लगा रहो, बाबा आपकी जो कमाई कर रहा हूं आपके लिए कर रहा हूं, मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूं, आई एम लिविंग फॉर यू नॉट फॉर मी, बट एज पर योर डायरेक्शन, आपके श्रीमत के अनुसार, इसके लिए आपका श्रीमत क्या है, बच्चे काम कर बाबा की कर रहे हो आप, घर में करो, यहां भी बैठे नहीं रहेंगे, यहां भी सेवा करता है, नौकरी करो सेंटर संभालने वाले भी सेवा करती है, वो भी सेवा सेंटर ही है, बाहर नौकरी कर रही है, तो नौकरी के तहत वो भी बाबा के अपने लिए नहीं कर रहे, बाबा आपके कर रहे हो, आपके श्रीमत के अनुसार, वहां झूठ सत्य गलत नहीं, विधि श्रीमत के अनुसार, भाई बाबा फिर ये जो कमाई है, तो बाबा ने उस कमाई की व्यवस्था भी बताया, बच्चे 4 हिस्सा करो, तो उस विधि पूर्वक करते हो तो आप गृहस्थ में रहते हुए भी इक्वल टू सेंटर में समर्पित हो, यहां भी सेवा है वहां भी सेवा है, कहीं भी रहो तो आप समर्पित ही हो, ये विधान, ऐसे नहीं चंद्र में ही रहना चाहिए, मधुबन ही बैठना चाहिए, बाहर बैठे तो कुछ काम का नहीं, नहीं, दुनिया के किसी कोने में रहो, बाप के श्रीमत के अनुसार अगर आप करते हो आप समर्पित के समान ही है, इक्वल है, और उससे ज्यादा है, उससे भी ज्यादा है, क्यों? वहां आप फुल अटेंशन रखते हो, यहां बाबा के घर में बैठे हैं, बाबा है तो वहां आपका तन भी लग रहा है, मन भी लग रहा है, धन भी लग रहा है। अब हमारा तन और मन लग रहा है, धन नहीं लग रहा है ना, वहां तीनों और बेटर, समझा? ये चीज चाहिए, ठीक है? और बताओ, तन के लिए समझ में आया? आज बाबा ने हड्डी हड्डी यज्ञ में लगाओ, कैसे लगे? इसके अंदर कोई आपको कंफ्यूजन है, भाई जी हम घर में रहते हैं, संसार को देख रहे हैं, हाँ ये कैसे होगा, ऐसा कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। हाँ कहा, हाँ कहा, गृहस्थ में रहते हुए भी, गृहस्थ आश्रम है ना, गृहस्थ में रहते हुए कभी, ये कब होगा? ऐसे कहने से नहीं होगा। आपको लगता है मैं खाना बना रही हूं, किसके लिए? मेरे पति को अच्छा लगता है, मैं खाना में मेरे बेटे के लिए खाना बना रही हूं, है ना, ये आया तो गृहस्थ नहीं हुआ, गृहस्थ नहीं होगा। वहां कुछ भी कर रहे हो, मेरा कुछ भी नहीं, बाबा खाना बना रही हूं, आपको भोग ला, आपको, आपके लिए बना रही हूं, ये धन, ये तन, ये मेरा पति नहीं, ये आपका बेटा है, ये मेरे बच्चे नहीं, ये आपके बच्चों की मैं सेवा कर रही हूं। ये समझ अगर है, गृहस्थ में रहते हुए भी आप समर्पित हो, लेकिन ये सब कंडीशन जानना चाहिए। हाँ उधर ध्यान, देखो हर एक का सॉल्यूशन चाहिए, देखो एक्यूरेट है, संसार में हम सुना के जाते हैं, अपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है ना, जैसे ज्ञान है ना, भाषण नहीं होता है कि पढ़ने से भी नहीं आएगा आपको, ज्ञान वार्तालाप है, अर्जुन और श्री कृष्ण के वार्तालाप। अगर हमने कुछ कहा, आपको पूछने का मार्जिन चाहिए, ऐसे कंडीशंस होते हैं। देखो आपने लक्ष्य रखा था आज ये सब्जी बनाएंगे, बाबा को अच्छा, बाबा को भोग लगाना है, प्लान किया। अगर पति ने आपको कहा नहीं आज ये बनाओ, ठीक है, तो भी बाबा को, बाबा आपके बच्चों को ये खाना चाहिए, आपको भोग बना के आप बच्चों को ये खिलाना, तो वहां भी बाबा का बच्चा, मेरा पति नहीं है ना, बाबा आपके बच्चों को भी ये चाहिए, तो आपको भोग लगा के आप बच्चों को ये खिलाना, तो वहां भी बाबा लाओ, हर कर्म में यस बीच में लाओ। मेरे पति, मेरे बच्चों ने ऐसे कहा, बाबा मेरा तो प्लान इधर था, ये था, वो भी आपका प्लान नहीं, आपने सोचा था बाबा आज ये करते हैं, लेकिन उसमें बच्चों ने, किसी परिवार ने, किसी ने कहा, कोई बाहर वाला भी कहेगा, तो भी बाबा ये आपके बच्चों के लिए, आपको बच्चों के लिए रखा, आप भोग लगाते समय भी बाबा ये आपके लिए बनाए, आपके बच्चों को ये अच्छा लगता है, इसके अंदर आप ऐसी शक्ति भरो तो आपके बच्चों का तन मन निर्मल हो। तो बनाते समय भी मेरा पति मेरा बच्चा नहीं, वहां भी बाबा ये आपका बच्चा है, ये समझ हो गया? तो समझ सिर्फ समझ का खेल है, स्थूल कुछ नहीं है, तो समझ के लिए भी नॉलेज चाहिए ना, नहीं तो वहां अटक जाता है, अटक नहीं होना चाहिए, तो वार्तालाप चाहिए। हाँ ये यही, यहां ही आता है मिस्टेक, तभी तो मैंने, तभी तो इन्होंने पूछा, यहां ही ज्ञान हमने सुना, तब कहा ज्ञान वार्तालाप चाहिए, आपके मन में क्या क्या दुविधा है, वो ये ज्ञान सभी के लिए, सबके लिए अलग अलग है, नहीं तो भाषण में क्लास में क्या होता है, हम बोलते गए कोई फायदा नहीं, हजार लोगों को ज्ञान सुनाया कोई फायदा नहीं, एक ही व्यक्ति को अगर समझाओ एक घंटा, उसके अंदर घुसा वो फायदा है, उसको ज्ञान वार्तालाप कहा, आपके मन में सुनने के बाद कुछ दुविधा उसका निवारण होने, तो ज्ञान आचरण में आता है। अभी आप कहेंगे कोई भी आया, हाँ बाबा आपके बच्चों के लिए अच्छा लग रहा है, तो वहां मोहिनी बहन हो, दादी भी हो, तो बाबा आपके बच्चों के लिए, मेरी दादी नहीं, मेरी बहन जी नहीं, मेरा पति नहीं, तो मैं आता है, तो करो हर काम करो, लेकिन किसी को भी हो, बाबा ये आपके बच्चे है, उधर बात करो, बाबा आपके बच्चों के लिए अच्छा लग रहा कहा, आपके बच्चों ने ऐसे कहा, आपके बच्चों के लिए बना रहे, तो ये भावना अगर अंदर है तो व्यक्ति नहीं आया, उधर व्यक्ति का नाम नहीं आया, नहीं तो बहुत लोगों के लिए खाना बनाते समय, जैसे देखो दो है, एक यहां पर्सनल खाना बनता है, वीआईपी कहते हैं, तो नाम वीआईपी का खाना, एक है बाबा का जनरल भोग बन के आता है, भोग बाबा को लगाया, वो जनरल में गया, वहां व्यक्ति का नाम नहीं आता है, जनरल बाबा को भोग लगाया वो खाया, है ना, इनके लिए बनाया, इनका नाम आया, उनकी भावना, इनको नमक कम चाहिए, इनको ज्यादा चाहिए, तो वहां कौन आया, व्यक्ति आया, है ना, इसलिए बहुत समझ चाहिए, ज्ञान के पूरे स्पष्टीकरण चाहिए, नहीं तो जनरल सुना के जाओ जनरल हो गया। लेकिन वहां समय प्रश्न आता है जहां यह हमको पता ही नहीं था, कर्मों की बहुत कुय गति है। असल अगर आप जैसे तीन चीजें इसके अंदर है, आप खाना बना रहे हो, पति को बच्चों को 7 बजे स्कूल में जाना है, गड़बड़ी में आपने बनाया तो टिफिन में डाला, तो बच्चों को टिफिन में दे, वो अभी तो नहीं खाएगा, 10 बजे खाएगा। फॉर एग्जाम्पल तीन ऑप्शन आपके ने जो कहा, एक दूसरा आपने कहा बाबा के भोग के लिए निकाल के रखते हैं, बाद में लगाएंगे, अभी गड़बड़ी है, इन सबको टिफिन में डाल के दिया, वो चले गए, उनको अभी तो खाने वाले नहीं, बाद में जाने के उन्हें भोग लगाती हो, नहीं ये भी ठीक नहीं। बनाते बनाते समय अगर बच्चों ने पति ने किसी ने हाथ लगा के खाया, भोग नहीं लगाना है, समझा? अगर झूठा हो गया ना, कोई अर्जा नहीं, भोग नहीं लगाना। अगर बना बाबा के लिए लगाना है तो अलग फल रखो, फल रखो, नहीं तो अलग चीज बना करके बाबा को भोग लगाओ। उसमें से पता है आपको घर में चीज बनती है सबके लिए, ये उनको खाना है, खाएंगे, एक दिन से पता चला तो उनके लिए रखो, भोग नहीं लगाना। जब कोई नहीं आए स्वतंत्र आप दिन में, तब अलग बना करके बाबा को भोग लगाओ। जिस दिन आपने बनाया, आपका लक्ष्य था भोग लगाना है, बच्चों ने किसी ने झूठा किया, कोई अर्जा नहीं, डिस्टर्ब नहीं होना, तो कुछ बाबा के बच्चे हैं, और फल लेकर के भोग, अपने समय पर भोग लगाना है तो फल लेकर भोग लगाओ, बस ना वो नो वो नहीं लगाना है, इसलिए कहा। हाँ बना तो हाँ बाबा आपके बच्चों ने खाया, हाँ नहीं लग सकता, हाँ बस नहीं बच्चे आपने आप के पहले बच्चे बाबा को भी बनाओ कभी, पहले यहाँ भी पहले बाबा बच्चों को खिला के फिर खाता था, फिर खाना खाने जाता, पहले देखता था चारों तरफ सब बच्चों को खाना मिला बेकरी पार्ट में भी, फिर बाबा आके बैठ जाता था, पहले नहीं मिला पहले इनको दे दो। तो बाबा पहले आप तो बच्चों को कहते आपके बच्चों ने पहला भोग लगाया, बाबा को मन में संकल्प करो फिर वो दोबारा वही भोग नहीं लगाना, ऐसा व्यवस्था होगा चलेगा। फल तो ताजा नहीं मिलेगा, फल तो एप्पल 2-4 दिन पहले रखा था, चलेगा फल रखा, फल काट के रखा, चलेगा। और बताओ, हाँ अभी तभी तो मैं तीनों बताया कि आपने बनाया, पहले बाबा के टिफिन अलग डब्बी में भर कर रख दिया, और बच्चे जा रहे स्कूल में, अभी तो खाने वाले नहीं, 1 घंटे के बाद खाएंगे, तो आपने बच्चों को दे दिया तो भी नहीं चलेगा, नहीं करना चाहिए। खाया झूठा तो करेंगे, वो तो 10 बजे खाएंगे, लेकिन अभी 5 मिनट के बाद में भोग लगाती हूँ, पहले निकाल के रखा फिर किया। कभी कभी यहां भी होता था, कोई जा रहे भोग लेके जा रहे, भोग लगाने से पहले, तो भी विधि नहीं है, भावना के लिए नहीं है, विधि पूर्वक, नहीं तो नहीं, भोग लगने के बाद अलग ही, भोग लगने के बाद ही देना है, चीज में कोई वस्तु नहीं, ताकत नहीं है। तो वो कभी होता है, बहुत जगह होता है कि भोग बना के रखा और बच्चों को सबको टिफिन में डाल के दे दे, वो जाने वाले हैं, बाद में आराम से बैठ के हम भोग लगाएंगे, नहीं करना चाहिए, इसलिए कहा। ये भी बहुत जगह पर होता है, यस, तभी तो मैंने कहा आपको, ये पता है, ये तीन चीजें हैं, एक भोग बना के रख दिया, बाकी इनको इनको टिफिन में डाल के दिया, वो सब चले गए, खाएंगे अभी नहीं, झूठा नहीं करेंगे, वो पता है 9-10 बजे खाएंगे, उसके बीच में हम भोग लगाएंगे, पहले बाबा को लगाया तो भी उनके नाम से अलग हो गया ना, तो वो जरूरत नहीं है, फल लगाओ बाद में जो चीज है ऐसे है। ना वो पहले भोग लगा दिया ना तो नहीं चाहिए, दूसरे दिन रखने की जरूरत नहीं, एक बार भोग लगाया है तो दोबारा उसी से भोग रखने को नहीं चाहिए, फ्रेश ताजा जितना हो ताजा, अभी फल ताजा कहां से लेकर ना, झाड़ को लगे घर में झाड़ लगे नहीं, तो ताजा है, कटा हुआ फल दोबारा नहीं लगाएंगे, तो फल है तो चलेगा, लेकिन ऐसी नहीं चीज बना के रखी हुई वो रखे, जरूरत नहीं, ताजा ताजा होना चाहिए जी। और कौन? हाँ, तीन प्रकार, एक होता है कि खाने के लिए कभी कभी टेस्ट करते हैं, नमक डाला कि नहीं टेस्ट करके फिर भोग लगाएंगे, वो भी नहीं होना चाहिए। और इतना भी होता है कि पहले मधुबन में आज तक भी, पहले भी था, पहले सिर्फ मम्मा ही भोग बनाती थी, किसी की दृष्टि भी नहीं पड़ना चाहिए। अगर मधुबन में यहाँ जलेबी बनता है, खिड़की से भी लोग देखते हैं, तो उसके मन में पहले मुंह में पानी आता है, पहले भोग उनको लगता है, तो इसलिए किसी की दृष्टि भी नहीं पड़ना है, क्यों? भगवान को भोग लगाना, इतनी स्वच्छता चाहिए। उसके लिए आपको एक ध्यान रखना बताता हूँ प्रैक्टिकल। जयपुर में ऐसा हुआ, अभी माता जी आज गुरुवार है, भोग लगाना है, बहन जी आज स्नान सिर पर भी स्नान भी करके भोग बनाती है, तो भोग बनाया, पनीर की सब्जी बनाया, सिर पर स्नान किया, हवा चलता है फैन से तो बाल का टुकड़ा गिर गया, पता ही नहीं, पनीर की सब्जी में दिखाई भी नहीं दिया, भोग लगा के गई, बाबा ने उसको देखा, बच्ची सांप लेके आए वो, बाबा भोग में सांप कैसे होगा, देख लो, एक सेकंड में नीचे आ गई, तो कहा बाबा ने सांप दिखाया, इतनी छोटी डब्बी में सांप कैसे जाएगा, भोग किसने रखा, उसको बुलाया, कहता मैंने रखा, सांप कैसे आएगा, बाबा ने दिखाया, बाबा पर विश्वास है कि आपके ऊपर, खोल के देखो, खोला कहां है, देखा पनीर की सब्जी के अंदर बाल का टुकड़ा था। तो सर्वशक्तिवान और देवताओं को भोग लगा, दोनों में अंतर है, देवता है मनुष्य है, सर्वशक्तिवान शुभ बाबा है, पवित्रता का सागर है, इसलिए सफाई मुंह से भी नहीं, जैसे नाद द्वारा जाओ, मुंह को भी पट्टी, सिर को भी बाल बांध करते हैं, कुछ गिरना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, किसी की दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए, बनाते बनाते औरों की दृष्टि पड़ती है, अरे आज जलेबी बन गया, पहले भोग लग गया है ना, इसलिए भोग की बहुत सारी कंडीशन है, ये प्रैक्टिकल कहानी नहीं। हाँ तभी तो दरवाजा बंद करके, इधर अभी तक भी सारी खिड़की बंद करते हैं, बंद करके भोग, और सवेरे सवेरे बनाओ, पहले उठते ही स्नान करके बनाओ, संकल्प आना अलग, दृष्टि नहीं पड़ना चाहिए, दृष्टि से फीलिंग ज्यादा आती है, संकल्प जहां भोज बना हुआ है, सभी लोग सेंटर स्टूडेंट को तो पता नहीं चलता ना, हाँ छोटे सेंटर में पता भी चल गया संकल्प, लेकिन बना करके रखा, सुगंध आता है, घर छोटा है, सेंटर छोटा है, तो दैट इज सुगंध को तो रोक नहीं सकते, हाँ लेकिन ये नहीं होना चाहिए, दृष्टि पड़ी उनकी। हाँ तभी तो कहा, तभी तो पहला बना, बना के रखा, नहीं तो अलग ही बना, तो ये सब लगाओ ने भोग, नहीं तो बता घर में भी बना करके फिर भोग लगा के सबको खिलाएंगे, हाँ हाँ लेकिन खुशबू आएंगे, लेकिन सदृष्टि भी पड़ी कोई, हाँ हाँ वो देखना चाहिए, अगर ऐसा कुछ हुआ तो नहीं खिलाना, नहीं लगाओ, देवता है और सर्वशक्तिवान को भोग लगाने, दोनों में अंतर है, देवताओं का भोग अलग है, मनुष्य में आया तो बहुत सारी कंडीशन चाहिए, इतनी स्वच्छता चाहिए। और बताओ, ये देखो आपने भोग याद किया तो भोग आ गया, देख लो। और बताओ, नहीं चलेगा, आप सारा दिन सेंटर में रहते हो, सेंटर में सेवा होती है आपकी, सेंटर में भोग लगाते हो गया, सेंटर में घर में नहीं लगाओ, आप ही लगाते हो, उधर भी घर में भी आपको लगना है, सेंटर में भी आपको लगाना है, दूसरा तो कोई नहीं होता है, तो जरूरत नहीं, एक ही जगह है, उधर अलग इधर अलग करने की जरूरत नहीं है, बाबा एक ही है, आपका घर ही सेंटर है। जी अलग चलेगा, चलेगा, जैसे कि भाई एक किलो एप्पल लाया, अंगूर लाया, ग्रेप्स लाए, आधा उनको दिया, आधा आपने रखा, उसमें से आपने भोग में लगाया, को वो फल काट के नहीं हुआ, ऐसा ना, जैसे कि मार्केट में कितना आता है उसमें चलेगा, लाने के बाद अलग कर दिया, आपने अलग रखा वो रखो, लेकिन और एक याद रखना चाहिए, किसी के घर में प्याज लहसुन बनता है, अभी घर में सभी ज्ञान में नहीं चलते, माता जी अकेली चलती है, तो माता जी कहते मैं बाबा को अलग खाना बना के भोग लगाती हूँ, घर में प्याज लहसुन सब बनता है, नहीं लगाओ, तो भी कितना भी क्या घर में बन रहा है, स्थान एक ही है, तो जरूरत नहीं, उसके जगह पर फल लगाओ, जिस घर में सभी ज्ञान में चलता है, कोई प्याज लहसुन मछली ऐसे कुछ नहीं करता है, तो वहां भोग लगाओ, घर में बन रहा है, चूल्हा एक ही है, बर्तन आपने अलग रखा, वातावरण वही है, उस वातावरण में मैं अलग बना के बना बाबा का भोग लगाती हूँ, जरूरत नहीं, वो वातावरण नहीं है, तो फल काट के रखो, तो आपके नाम से सेंटर में तो भोग लगता है ना, घर में वातावरण नहीं है, तो इसका भी ध्यान चाहिए, ये भी बहुत जगह पर ऐसा होता है, तो क्या कहे घर में बाकी सभी लोग तो ज्ञान में नहीं चलते हैं, परिवार वाले हैं, किसी के लिए प्याज लहसुन किसकी सब्जी बना दिया, और उसी के अंदर आप कहेंगे मैंने बर्तन अलग रखा है, अलग मैं बाबा को बना के भोग लगाती हूँ, इधर भी ध्यान चाहिए।
क्या बैंक से अनाउंसमेंट आई है ज्ञान सरोवर के, ज्ञान सरोवर में चेंज हो सकते पैसे आ गए नए नोट?
हाँ, दोज हु वांट टू चेंज।
यहाँ तो अभी लगता है थोड़ा दिन लगेगा, यहाँ यूनियन बैंक है, लेकिन यूनियन बैंक वाले चेंज नहीं।
ये कहता प्रूफ मांग रहे, आपके पास पासपोर्ट है ना? नहीं, विदेश के लिए तो कंडीशन था, एयरपोर्ट में ही आप कर सकते करके ऐसा अनाउंसमेंट किया था, है ना? एयरपोर्ट में उतरते यू विल गेट इंडियन करेंसी, देयर ओनली एक्सचेंज, ऐसा अनाउंसमेंट हुआ। अभी यहाँ वो आपको पासपोर्ट के आधार से पैसा नहीं देगा, दिस इधर उनका ऑर्डर नहीं आया होगा। हाँ, पूछ के बताएंगे। लक्ष्मण भाई देता है, नहीं इसका तो नियम होगा, देवी देहोगन देवग अनाउंस किया है कि कोई भी प्लेन से उतरते ही वहां ही आपको एक्सचेंज मिलेगा। हाँ हाँ, पूछ के बताएंगे। हाँ, बैंक वाले को पूछना। अच्छा अच्छा कौन? हाँ सब ले। तो समझ में आया तन कहाँ लगाना चाहिए। किचन में बैठ के वहाँ ही, बाबा का कमरा नहीं है तो नहीं लगाओ। लेकिन अगर बाबा का अपना कमरा नहीं बनाया, बाबा का उधर फोटो नहीं, कहाँ किचन में भी बाकी चीज भी होता है, तो उसके बदले स्थान नहीं है। नहीं तो हर घर में मंदिर जैसे होता है, भले मंदिर है उनका, नहीं है। हाँ उधर भी लग सकते हैं। हाँ यस, उधर बैठ के रखो तो उधर योग करते हो, है ना? हाँ उधर रखो, चलेगा। ओके चलेगा। लेक्चर ने एक्चुअली ऑफिशियली पूछेंगे जरूरत नहीं है, अगर सब व्यवस्था है तो लगाना चाहिए तीनों। एक, खाना विधि पूर्वक बनना चाहिए, घर में सभी लोग ज्ञान में चलते हैं, सफाई स्वच्छता है। दूसरा, स्थान बना हुआ है और आपके पास समय है, निश्चिंतता गड़बड़ी करके भोग में बच्चों को देना और कोई जा रहा है पटापट लगाओ, वो किसी दिखाने के लिए नहीं है, ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन है ना? यहाँ ये तीनों चीज अगर है तब लगाओ, नहीं तो हम हर गुरुवार को सेंटर में लगाते हैं, है ना? हाँ, तो वो व्यक्तिगत आप रख करके, जैसे खाना खाने से पहले बाबा को याद करके खाओ कहते हैं, वो व्यक्तिगत करो। लेकिन विधि पूर्वक बाबा के लिए बनाओ जैसे भोग, वो तीनों चीज होना चाहिए, तब वो यथार्थ हो जाता है। नहीं तो व्यक्तिगत आप लगा के करो, क्योंकि घर में सभी लोग है ना, आप अकेले ज्ञान में चलते हो, सभी लोग नहीं चलते, तो सभी का ध्यान है तो हो नहीं पाता है। तो वहां किसी का संकल्प, किसी की दृष्टि, किसी के विचार अलग, तो वहां दुविधा में लगाने, आप अपना व्यक्तिगत करो अपने तक, वो ठीक है, क्योंकि स्थान भी नहीं है। अभी विदेश में जैसे आपके पास अलग अलग स्थान है, भारत में ऐसा है हर जगह पर एक मंदिर होगा, स्थान है सब कुछ है, तो ये व्यवस्था इधर की, वहां के कंडीशन के अनुसार तो चलो को अर्जन है, जरूरत नहीं है। और बताओ समझ में आया? तो तन कहां लगाना चाहिए। अभी धन के लिए बात बताओ, धन की एक एग्जाम्पल बताता हूं, फटाफट जवाब दे दो तब तक भोग लगाने आगे। तो धन भी बाबा की सेवा में लगाना चाहिए, एक एग्जाम्पल देता हूं तो समझ में आएगा। तो भाई जी रोज सेंटर में आता है, देखता है योग में बैठता है, तो देखता थोड़े लोग जमीन पर बैठे, बाबा ने कहा धन के सेवा करो, तो बाबा ने मुरली में कहा, बहन जी मुरली सुनाते बच्चे, तन से सेवा करो, मन से सेवा करो, तन से सेवा करो। अंदर ही अंदर सोचता है बाबा आज तन से सेवा नहीं हो सकती है, बाबा ने कहा मन से करो, बाबा जहां तन लगेगा वहां मन भी लगेगा ना, तो नहीं हो सकता है। बच्चे धन से सेवा करो तो इनके मन में आया धन से सेवा कर सकता है। देखा जेब में 100 रुपया है तो सीधा मार्केट में गया, एक चेयर लाके रख दिया, तो धन की सेवा हो गया ना। चलेगा नहीं चलेगा? क्यों? तो तन से तो नहीं किया, वट एवर पॉसिबल, जितना साध्य है जितना किया सब पूरा नहीं हो सकता है, जो हो सकता है वो करो। व्हाट इज कंडीशन? ना वो उसने ला के सेंटर में रख दिया, मेरा नहीं, मना श्रीमत मुरली बाबा की है कि बहन जी की मुरली, श्रीमत पर का? हाँ वो क्यों, बाबा की मुरली है ना, बाबा को पूछ के करेंगे ना, तो बताओ जल्दी। देखो भोग लगाने वाले आ गए। हाँ लेकिन श्रीमत किसका है? बाबा का। लेकिन लेकिन उसको लगा सब लोग खुर्चे पर बैठे, सब जमीन पर भी बैठे एक सेंटर में, अपनी ताकत के अनुसार उसने एक चेयर लाके रख दिया। धन कहाँ लगाए? हाँ हाँ, तब भाई जी ने व्यवस्था बताई। तो ये कभी कभी समझ में नहीं आता है बहुत लोगों को। बाबा कहते हैं मुरली में श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करना, दूध में पानी मिक्स कर सकते, श्रीमत में मनमत कैसे मिक्स होगा? हाउ इट इज? हाँ है ना, ये समझ में आता है। तो मुरली में बाबा ने कहा तन मन धन लगाओ, हम तन नहीं लगा सकते, मन नहीं लगा सकते, धन लगाते हैं। धन लगाया, गया मार्केट में एक चेयर ला के रख दिया, कुछ ना कुछ सेवा किया, तो व्हाट इज रॉन्ग? ये समझ में आता है ना। हाँ तो कभी बाबा के बच्चे बड़े बड़े बैनर बनाओ, ये बनाओ, तो कहेंगे बाबा ने कहा हम करते हैं, बाबा का श्रीमत के अनुसार मुरली श्रीमत। हाँ यहां ये किसी को समझ में नहीं आता है, बहुत सूक्ष्म धागा है। तब का श्रीमत होते हुए भी अगर श्रीमत मुरली सुनकर आप बाहर कुछ कर सकते हो, अगर यहां कुछ कर सकते करना चाहते हो, यहां की व्यवस्था देखने वाले व्यवस्थापक है, निमित्त आत्मा है, यहां कुछ करना चाहते हो तो यहां के निमित्त आत्मा को पूछ के करना चाहिए। तो क्यों पूछना चाहिए, प्रश्न यहां आया। मुरली सुनकर आप बाहर कुछ करो, श्रीमत सबके लिए, लेकिन इस कंपाउंड के अंदर यहां व्यवस्था देखने वाले को जिम्मेवार आत्मा है, तो यहां पूछ के करना चाहिए। ये समझ में नहीं आता, बाबा ने श्रीमत बताया, हम श्रीमत के अनुसार सेवा करते हैं, तो श्रीमत है जरूर, लेकिन श्रीमत कहां? इस चार दीवार से यहां व्यवस्था देखने वाले उनको पूछ के, तब एक का पदम गुना जमा होता है, नहीं तो एक का एक गुना जमा होता है। ये समझ में नहीं आता है। उदाहरण के लिए आप एक ही बैंक में जाओ, दोनों भाई एक साथ में गए, दोनों ने 100-100 रुपया बैंक वाले को दिया, मेरा रख दो। भाई जी ने कहा मेरा 100 रुपया बैंक में रख दो, रख दिया। इस भाई ने भी कहा मेरा 100 रुपया बैंक में एक साल के लिए रखो। एक साल के बाद आप पैसे लेने गए, एक को 110 दिया और एक को 100 दिया, क्यों? दोनों ने एक साथ एक ही बैंक में दिया, सेवा दोनों ने किया, सेवा सभी कहते हैं, लेकिन सेवा का रिटर्न में डिफरेंस क्यों? उसने एक शब्द ऐड किया, एक ही शब्द, एक साल के लिए रखो, फिक्स डिपॉजिट हो गया। इसका एक 100 रुपया रख दिया करंट अकाउंट। हम सेवा करते हैं, सेवा करते समय किस भावना से क्या भंडारे में पैसे डालते हो आप? जरूर नहीं, बहन जी ने कहा था सेवा के लिए इसलिए डाल रहा हूं, तो बहन जी देंगी। भंडारे में डालते समय शिव बाबा ये आपकी सेवा के लिए, बाबा ने कहा मेरे श्रीमत पर करते हो तो एक का पदम गुना, भावना किस स्मृति से करते हो वो जरूरी है। सेवा जरूर करते, दुनिया में बहुत लोग सेवा करते हैं, सोशल वर्कर कितना करता है, तो किस भावना से किया, ये सूक्ष्म चीज समझ में नहीं आता है। श्रीमत और मनमत कैसे मिक्स होता है, समझ में आया? तो तन कहां लगाना चाहिए, मन कहां लगाना चाहिए? भोग लगाने वाला आई तो तन, रुक्मणी बहन आई, अरे ना, तो तन कहां लगाना चाहिए, मन कहां लगाना चाहिए? मन के लिए किसे कहेंगे? तन हो गया, धन हो गया, मन, मन कैसे लगाएंगे? तीनों चाहे हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस। हाँ तो मनसा सेवा करना चाहिए, लेकिन मन स्वच्छ होना चाहिए ना, पहले मन की सेवा करना चाहिए, है ना। अगर मेरा हाथ काला है, काले हाथ से अगर सफेद कपड़े को भी हाथ लगाओ तो भी काला हो जाएगा, तो मनसा सेवा किसको कहेंगे? तो वो भी कैसी करना चाहिए, मनसा सेवा भी किस कैसे करेंगे? सिंपल बाबा ने कहा, बच्चे किसी पर दृष्टि जाते ही आपके मन में विचार, शुभ बाबा ये आपके बच्चे, इनका कल्याण करो। कोई भी हो, मित्र हो दुश्मन, अच्छे लोगों को हम दान कर सकते हैं। खराब व्यक्ति के प्रति जिसने आपको दुख दिया उसके प्रति आएगा, है ना? तो तब कहा कि आप स्त्रियन ब्रह्मा कुमारी आश्रम में नंबर वन पवित्रता भी यही है। आप ग्रस्त में रहो, संसार में रहो, बाबा ने कहा 108 के माला में आ सकते हो, सिर्फ एक ही काम करना है, नंबर वन पवित्रता है। किसी ने शादी नहीं किया तो उसको पवित्रता नहीं की, तो ब्रह्मचर्य है। पवित्रता क्या है? किसी भी व्यक्ति पर नजर जाते ही आपके मन में क्या विचार आया। थॉट इज रूट कॉज, मन सारी बीमारी दुखों का कारण है। मन में क्या विचार आया, मन में गलत आया, दृष्टि वृत्ति कृति अपने आप हो जाएंगी। तो मन जीत जगत जीत का, ये मनसा सेवा। यहां हर एक आत्मा, कोई कैसा, इसको शास्त्रों में भी कहा, अधम ते अधम वहां पापी भी है। हाँ वो बहुत खराब है, आपने क्या किया, आपका धर्म कर्म क्या कहता है, वो जरूरी है। तो उस आप किसी भी आत्मा के प्रति देखते आपके मन में क्या विचार आया, श्रेष्ठ विचार। शुभ बाबा कभी कभी मनसा से मैं देता हूं, नहीं वो भी मैं आया हुआ, मैंने इनको, हाँ शुभ बाबा ये आपका बच्चा है, इसका आप कल्याण करो। बाप आया हुआ है, क्योंकि बाप डायरेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो कर्म बंधन में आएगा। बाबा बाबा कहेगा मुझे पता है लेकिन मैं नहीं कर सकता हूं, बच्चों के द्वारा ही। तब ये मनसा सेवा है। ये तीनों हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस कैसे करना चाहिए, अपने आप नहीं होगा। तब कहा कर्मों की गुह्य गति है ये, धन कहां तन कहां लगाना है, मन कहां लगाना है। तो देख लो, हम रोज मुरली सुनते हैं, ये बीमारी क्यों, ये गरीब क्यों, ये श्रीमंत क्यों, ये काला क्यों, ये गोरा क्यों, ये कौन, क्यों क्यों का सारे प्रश्नों का जवाब है। तो तन हम इस संगम युग पर जब भाग्य विधाता स्वयं आता है, सारे कलप का भाग्य बनता है। तब बाबा ने एक मुरली में एक ये सुनाया, बच्चे संगम पर शूटिंग भी हो रहा है और परिवर्तन भी हो रहा है। अभी जो कुछ कर रहे हो सारे कलप के लिए शूटिंग हो रहा है, ईच एक्शन इज रिकॉर्डेड। और जो कुछ पहला है समझ में आया ज्ञान से, अब भी परिवर्तन कर सकते हो, ये परिवर्तन का भी समय है। तो ज्ञान मिला, ज्ञान और शक्ति है। ये कल मैंने क्या था, ये आज ऐसा नहीं करना चाहिए, समझ में आया, अभी परिवर्तन करो। नहीं किया 5000 साल के लिए रिकॉर्डिंग हो गया। दोनों एक साथ चलते हैं, समझ में आया, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस। कन्विंस भाई जी, समझ में आया? और बताओ, गुड। अभी अच्छी तरह से बाबा को जिसने शरीर छोड़ा है ना, तो बहन जी ने उनको भूख लगेगा, आराम से योग करो उस आत्मा को भी। क्योंकि बाबा ने देखो 2 दिन पहले बहुत अच्छे एक पॉइंट सुना था, बच्चे संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप चाहिए, एक व्यक्ति नहीं, एक का नहीं, सभी संगठित रूप में। सर्वशक्तिवान शिव बाबा को याद करते हो, वो शक्ति काम करती है, उसको साइलेंस पावर कहते हैं। शांति की शक्ति क्या है, गीत बजाने से शांति आएंगी नहीं? अगर ये फैन चलेगा तो हवा आएगा, फैन है, फैन नहीं चल रहा हवा आएगी। तो हमारे पास ये 2 फैन है, ये दोनों फैन चलना चाहिए। अगर ये विचार जो करता है पॉजिटिव थॉट्स, तो इट क्रिएट्स वाइब्रेशंस, उसको कहा शांति की शक्ति। शांति मीन्स निल नहीं है, चुप होके बैठना, उसको शांति नहीं कहते हैं। शांति को भी पता होना चाहिए, मन में चलना चाहिए अच्छे विचार, ठीक है। ओम शांति। आगे